ओम शांति। हम सभी बैठ जाएंगे, साइलेंस में बैठेंगे, जहां जगह मिले वहां बैठ जाएंगे साइलेंस में। सब सीधा होकर बैठें और अपने ध्यान को केंद्रित करें यहां ब्रिकुटी के बीच। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज होती है जो हमें दिन में बहुत बार करनी है यहां से जाने के बाद। एक एक मिनट के लिए भी ये एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है। तो यहां पर जहां हम तिलक लगाते हैं, यहां पर विजुअलाइज करेंगे ब्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा, हर एक देखने का प्रयास करेंगे साथ साथ। जहां तिलक लगाते हैं, तिलक कभी सुनहरे रंग का होता है, कभी लाल रंग का होता है, बस उस तिलक की जगह देखेंगे। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, मैं आत्मा, अजर अमर अविनाशी, मैं आत्मा। देखते जाना है साथ साथ, अजर अमर अविनाशी, मैं आत्मा। एक लंबी जर्नी पर हूं मैं आत्मा। आज इस शरीर में है, परिवार है, संबंधी है, काम कारोबार है, इससे पहले किसी और शरीर में थे और इसके बाद एक नए शरीर में होंगे। ये मुझ आत्मा की जर्नी है। एक लंबी यात्रा पर हूं मैं आत्मा। मेरी यात्रा सिर्फ इस शरीर में 100 वर्ष की नहीं है। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। इसको फील करना है। अब चेक करें कि हम सब अपने जीवन के लिए प्लान बनाते हैं, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, बच्चों के लिए ये करेंगे, बहुत कुछ सोचते हैं, मेहनत भी करते हैं और बहुत सारी चीजें जो हम सोचते हैं वो सिद्ध हो जाती हैं। हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होता जाता है, लेकिन कभी कभी अचानक से जो सोचा नहीं था वो हो जाता है। कभी कभी जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, जो सोचा नहीं था उतना अच्छा हो जाता है, लेकिन कभी कभी अचानक से कोई और बात आ जाती है। तो अपने जीवन की स्क्रिप्ट को देखें कि जैसे जैसे सोचा था क्या जीवन वैसे वैसे चल रही है। मेरे जीवन की स्क्रिप्ट, मेरा भाग्य, जैसे जैसे मैं आत्मा बनाना चाहता हूं वैसे वैसे चल रही है। बहुत साक्षी होकर देखना है, बचपन से क्या क्या सोचा था, आज क्या सोच रहे हैं, क्या जीवन बिल्कुल मेरी इच्छा अनुसार चल रही है और क्या इस समय मेरे जीवन में कोई ऐसी बात है, मेरे भाग्य में कोई ऐसी बात है जो मैं आत्मा परिवर्तन करना चाहती हूं? क्या मेरे भाग्य में कोई ऐसी बात है जिससे मैं आत्मा परिवर्तन करना चाहती हूं? सिलेक्ट करेंगे एक बात, सिलेक्ट करें, हर एक चेक करें अपने जीवन में, अपनों के जीवन में, बच्चों के जीवन में, क्या कोई ऐसी बात है भाग्य में, छोटी सी बात भी हो सकती है, क्या कोई ऐसी बात है जिससे मैं आत्मा परिवर्तन करना चाहती हूँ, अपना भाग्य बदलना चाहती हूँ, अपने जीवन में आई हुई इस बात को ठीक करना चाहती हूँ? सिलेक्ट करना है, चाहे वो बात कितनी भी मुश्किल हो या कितनी भी छोटी सी हो, लेकिन आज एक बात को सिलेक्ट करना है। जिस जिसने सिलेक्ट कर लिया हाथ उठाओ, पता चले सिलेक्ट किया। ओके, वेरी गुड। ओम शांति। व्हाइट लाइट कर देंगे। बचपन से हमने ये सीखा कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। पत्ता पत्ता भी भगवान की मर्जी से हिलता है, ये हम बचपन से ही सीखते आए हैं। और इसीलिए जब भी कोई ऐसी बात होती है जिसकी जिम्मेवारी हम यहाँ यहाँ किसी पर नहीं रख सकते हैं, तो हम उंगली किस पर रख देते हैं? किस पर रखते हैं उंगली? रखो, किस पर रखते हैं उंगली? हम कहते हैं उसकी वजह से। और आसपास के लोग भी आकर कहते हैं क्या करें, ईश्वर की मर्जी थी। और जब जीवन में कुछ बहुत ऐसा होता है जो बहुत दर्द देता है, और उस समय कोई आकर कहता है ये तो ईश्वर की मर्जी थी, तो उस समय हम भगवान से भी क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? थोड़े दिन पहले हमारे पास एक बहन आई, उनके 20 साल के बच्चे ने शरीर छोड़ा बीमारी से। 5 साल से वो बीमारी थी, तो उन्होंने बहुत 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 प्रयास किया, मेडिकली तो प्रयास किया, लेकिन हर मंदिर हर स्थान गए, बहुत बहुत प्रयास किया, बहुत मन्नत मांगी, बहुत पूजा की, बहुत पाठ किया, सब कुछ किया। और उनको पूर्ण विश्वास था कि परमात्मा उनके बच्चे को जरूर ठीक कर देगा, लेकिन वो बीमारी ऐसी थी। तो जब उस बच्चे ने शरीर छोड़ा और वो पेरेंट जब सेंटर पर आए पहली बार, तो कहते अब हमारा मन नहीं करता भगवान को याद करने का, अब हमारा मन नहीं करता पूजा पाठ करने का। मैं बोला क्यों नहीं करता? कहते क्योंकि जो किया वो तो हुआ नहीं ना, फिर उसने तो हमारी बात मानी नहीं ना, उसने हमारा बच्चा क्यों ले लिया? तो ये हमारी सोच बनी है बहुत सालों से, हजारों सालों से बनी होगी, मेरा बच्चा उसने ले लिया। आज एक बात को पक्का करते हैं अपने मन में कि अगर परमात्मा सबका भाग्य लिख रहे होते तो हम सबका भाग्य कैसा होता? सिर्फ एक थॉट सोचो, अगर भगवान सबका भाग्य लिख रहे होते तो हमारा भाग्य ऐसे होता या ऐसे होता या ऐसे होता? कितना परफेक्ट होता? एकदम परफेक्ट होता। ये सिंपल रूल है। अगर हम भी किसी का भाग्य लिखेंगे तो बहुत अच्छा लिख देंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अपने बच्चे का लिखोगे तो बहुत ही अच्छा लिखोगे, लेकिन किसी का भी लिखोगे तो अच्छा लिखोगे। तो एक, अगर परमात्मा भाग्य लिख रहे हैं तो वो परफेक्ट लिखेंगे, और दूसरा, अगर परमात्मा भाग्य लिख रहे हैं तो सभी बच्चों का कैसे लिखेंगे? एक जैसा लिखेंगे। आप में से किस किस के एक से ज्यादा बच्चे हैं हाथ उठाओ, मतलब दो तीन बच्चे हाथ उठाओ। अगर आपको उनका भाग्य लिखना हो, आपका एक बच्चा बहुत आज्ञाकारी है, हमेशा हाँ जी मम्मी हाँ जी पापा, बड़ा अच्छा अच्छा वाला आज्ञाकारी बच्चा है, और दूसरा बच्चा थोड़ा मस्ती करता रहता है, कभी कहना मानता है कभी नहीं मानता, कभी काम करता है कभी नहीं करता, पढ़ाना भी उसको बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन दोनों आपके बच्चे हैं। और अगर आपको दोनों का भाग्य लिखना हो तो क्या आप एक का थोड़ा ज्यादा अच्छा और दूसरे का थोड़ा सा कम लिख सकेंगे? कौन कौन लिख सकेगा एक का ज्यादा अच्छा एक का थोड़ा सा कम? देखो, मुड़ के देख लो, एक भी किसी का हाथ ऊपर नहीं है। चलो अपने बच्चों का छोड़ो, किसी ने आपको बहुत तंग किया है, बहुत 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 तंग किया है, आपका जीवन ही उथल पुथल कर दिया किसी ने, आपको उसके बच्चे का भाग्य लिखना पड़े, क्या आप उसके बच्चे के भाग्य में थोड़ा सा उथल पुथल लिखेंगे? कौन कौन लिखने की हिम्मत करेगा? उसने आपके साथ बहुत गलत किया है, क्या आप उसके बच्चे के भाग्य में थोड़ा सा लिखेंगे? ये बीमारी आ जाए, यहाँ ये फेल हो जाए, यहाँ इसका एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा हम लिखेंगे? कौन कौन नहीं लिख सकेगा उसके लिए, वो हाथ उठाओ। तो हमने कभी सोचा कि हम कलयुग के अंतिम समय में इंसान मनुष्य आत्मा, हम भी किसी के भाग्य में ऐसी चीज नहीं लिख सकते? और सृष्टि पर देखो क्या क्या हो रहा है, और ये सब कुछ जो हो रहा है हमने कहा ईश्वर की मर्जी, और उसके ऊपर डाल दिया, अपनी जिम्मेवारी छोड़ दी। एक और बात बचपन से सुनी थी, जो हो रहा है वो मेरे कर्मों का परिणाम है। कौन कौन इस बात के लिए मानता है कि जो जो हो रहा है वो मेरे? तो अब चेक करो, दो डिफरेंट बिलीफ सिस्टम है। एक बिलीफ सिस्टम है जो मेरे साथ हो रहा है उसकी मर्जी, दूसरा है जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे कर्मों का परिणाम है। दोनों तो राइट नहीं हो सकते ना, दोनों में से एक ही राइट हो सकता है। अगर वो मेरे कर्मों का परिणाम है तो मेरे मेजॉरिटी कर्म बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमारा भाग्य बहुत अच्छा है। लेकिन कभी 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 पता भी नहीं कब कोई हमसे गलती हो जाती है, तो उसका भी तो परिणाम जीवन में आएगा ना। तो हमारा परफेक्ट भाग्य नहीं चल रहा है इस समय। और दूसरा, हम सबके कर्म अलग अलग हैं, तो हम सबका भाग्य भी अलग अलग होगा। तो अब ये दो बिलीफ सिस्टम है, भाग्य परमात्मा लिख रहा है या भाग्य हमारे कर्मों से हो रहा है। अब कौन हाथ उठाएगा कि भाग्य कर्मों से हो रहा है? पक्का? अब हमेशा के लिए इसको फिट करना है। तो जब भी कोई बात आएगी और मेरा मन कहेगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उंगली किस पर रखनी? उंगली किस पर रखनी है? रखो रखो, यहां नहीं रखनी, यहां रखनी है। आत्मा यहां है जो कर्म करती है। तो छोटी छोटी बातों के लिए हम यहां उंगली रखते हैं, बड़ी बातों के लिए हम वहां उंगली रखते हैं। हम सिर्फ अपने पर ही उंगली नहीं रखते और जिम्मेवारी नहीं लगते लेते परिवर्तन की। तो आज से एक लाइन फिट करते हैं, मेरे साथ जो हो रहा है, जो बहुत अच्छा हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है, जो ठीक ठाक हो रहा है, और कब भी अचानक थोड़ा सा कुछ थोड़ा ठीक नहीं भी हो रहा है, वो सारी चीजें किसकी वजह से हैं? किसकी वजह से हैं? मुझात्मा की वजह से हैं। उंगली कहीं और नहीं डालनी। अब दूसरी चीज, अगर उसमें मुझे कुछ बदलना है तो मुझे किसके पास जाना है? अगर मुझे अपने भाग्य में कुछ बदलना है तो मुझे किसके पास जाना है? क्योंकि हम जिम्मेवारी भी औरों पर रखते हैं और बदलने के लिए भी हम किसी और के पास जाते हैं। जब पैदा हुए थे किस किस के पास जन्म पत्री है अपनी? आज सबके पास है। तो एक बार जब वापस जाएंगे तो पंडित जी से पूछना, पंडित जी बचपन में मैं तो पैदा हुआ, मैंने तो कोई कर्म नहीं किया, तो पैदा होते ही ये जन्म पत्री कैसे बन जाती है? कैसे बनता है ये? 10 साल में ये होगा, 20 साल में ये होगा, ये कैसे बन जाता है? बच्चे ने तो कोई कर्म नहीं किया। तो उससे हमें पता चलता है कि जो भाग्य की जन्म पत्री लिखी वो उस छोटे बच्चे की नहीं, उस छोटे से बच्चे के शरीर में जो आत्मा ने प्रवेश किया है ये उसकी जन्म पत्री है। और जन्म पत्री किस आधार पर बनी? अब उंगली रखो यहां जहां रखी थी कल रात को, मैं आत्मा, अभी इसको पकड़ो, मैं आत्मा इस शरीर में हूं, अभी मैं ये शरीर छोड़ती हूँ, निकालो इधर से आत्मा को, अभी मैं ये शरीर छोड़ती हूँ, इकट्ठे मिलके बोलते हैं, क्या क्या पीछे रह जाएगा? शरीर पीछे रह जाएगा, सभी बोलें ताकि रिकॉर्ड हो जाएगा, क्या पीछे रह जाएगा? शरीर पीछे रह जाएगा, लोग रिश्ते पीछे रह जाएंगे, पीछे रह जाएगा, धन संपत्ति पीछे रह जाएगी, नाम मान शान भी पीछे रह जाएगा, साथ क्या जाएगा? सिर्फ मुझ आत्मा के कर्म और संस्कार। बोलिए साथ क्या जाएगा? ये याद रखना है, हर क्षण जीवन के ये याद रखना है कि जीते हुए भी और जाते हुए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मुझ आत्मा के कर्म और संस्कार। अंडरलाइन करके उसको बड़ा सा कहीं लिख दो जहां हर रोज दिखाई दे, क्योंकि हम उन सारी चीजों पे तो बहुत मेहनत करते हैं जो आज भी हमें खुशी नहीं दे सकती, हमें आराम दे सकती है, लेकिन एक सेकंड में वो सब कुछ छूट जाएगा, मेरे साथ जाएंगे मेरे कर्म और संस्कार। तो जैसे अकाउंटिंग में एक क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है, अगले दिन वही बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाती है। 31 मार्च को वो बैलेंस शीट को क्लोजिंग बैलेंस शीट बोलते हैं और 1 अप्रैल को उसी बैलेंस शीट को ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं। इसी तरह मुझ आत्मा का इस शरीर में जो आखिरी क्षण होगा, उस आखिरी क्षण तक जो कर्म किए, अच्छे बुरे साधारण बहुत श्रेष्ठ, वो सब मेरी बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट। और मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, नए शरीर में प्रवेश करूंगी, कुछ महीनों के बाद बच्चा पैदा होगा और पंडित जी जो आपके हाथ में पकड़ाते हैं पेरेंट्स के, वो होती है उस आत्मा की ओपनिंग बैलेंस शीट। लेकिन होता क्या है, हम जीवन भर उस जन्म पत्री को पकड़कर ही रेफरेंस की तरह यूज करते रहते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट है, लाइफ की बैलेंस शीट नहीं है, वो ओपनिंग बैलेंस शीट है सिर्फ। उसके बाद जो भाग्य बनेगा वो बनेगा कि उस शरीर में आने के साथ हम कैसे कैसे कर्म करते रहते हैं। आप में से किस किस को इंटरेस्ट है जानने के लिए कि आने वाले समय में मेरे जीवन में क्या क्या होने वाला है? हाँ, बहुत रुचि होती है। अभी अगर साथ वाले हॉल में कोई आए ना, बोले मैं हाथ देख के बता दूंगा अगले साल आपके जीवन में क्या होगा, तो यहां से उठ के वहां जाएंगे सारे, है ना? दो ऑप्शन होती है, एक मेरे जीवन में क्या होगा और दूसरा है जो हम चाहेंगे वो होगा। कौन सा बेटर है? जो हम चाहेंगे वो होगा। वो विज्ञान है, वो भी एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। वो किस चीज की साइंस है? वो साइंस हमें ये बताती है मेरे जीवन में क्या होने वाला है। तो वो बताते हैं 10 साल बाद ये होगा, 20 साल बाद ये होगा, तो वो ये बता सकते हैं हमारे जीवन में क्या आएगा। स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि जब वो आएगा तो मुझे उसका सामना कैसे करना है। तो स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि मेरे पूर्व कर्मों की वजह से क्या आने वाला है। एस्ट्रोलॉजी सिखाती है कि पूर्व कर्मों की वजह से क्या आने वाला है। स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि वर्तमान में कौन सा कर्म करके भाग्य को बदलना है। बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहिए, अगले साल क्या होगा, उसके अगले साल क्या। कभी कभी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, होनी 10 साल के बाद होती है, लेकिन 10 साल पहले पता चल जाती है तो वो 10 साल भी चिंता और परेशानी में बीत जाते हैं। और उस 10 साल में आत्मा की शक्ति सोच सोच के परेशान होकर इतनी कम हो जाती है कि जब वो बात आती है तो उसके पास सामना करने की शक्ति नहीं होती है। इन्फॉर्मेशन बहुत ध्यान से लेना है, ये टाइम पास नहीं होता ऐसे बैठकर हाथ किसी को भी दिखा दिया। बहुत ध्यान से, हमने बहुत लोगों का देखा है, कुछ पता चल जाता है उसके बाद नींद उड़ जाती है। जो होना है वो होगा, लेकिन अगर अपनी शक्ति को बढ़ा के रखेंगे तो उस सीन का सामना बहुत सहज तरीके से करेंगे। तो अब अपने कर्मों को चेक करते हैं। हम ज्यादातर किस चीज को अपना कर्म कहते हैं? कहते वो मिले ना, मैंने उनसे बहुत अच्छे से बात की, मैंने बहुत अच्छा कर्म किया, मैंने बहुत अच्छे से व्यवहार किया, मैंने बहुत अच्छा कर्म किया। कर्म सिर्फ बोल और व्यवहार नहीं, कर्म सोच, भाव, भावना, बोल, व्यवहार, इंटेंशन। इस कर्म के पीछे का मेरा इंटेंशन क्या था? इंटेंशन तो बहुत बहुत सूक्ष्म होता है, उसको बहुत डीपर चेकिंग करनी होती है। अगर आप किसी से अच्छे से भी बात कर रहे हैं, उसके पीछे का आपका इंटेंशन क्या है? क्या आप उनको प्रभावित करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो भी आपके लिए कुछ अच्छा करे कभी? क्या आप चाहते हैं कि वो आपको अच्छा माने? आप क्यों उससे अच्छे से बात कर रहे हैं? या आप इसलिए अच्छे से कर रहे हैं क्योंकि वो आपका नेचुरल कर्म है, इंटेंशन। तो कर्म क्या क्या होता है, सभी रिपीट करें। इंटेंशन बोलिए, मतलब भाव, भाव क्या था इस कर्म से पीछे। सोच रिपीट करना है क्योंकि यहां रिकॉर्ड करना है। सोच, सोच, सिर्फ तीन लोग बोल रहे हैं ना 3000 में से। हाँ, यहां रिकॉर्ड करना है, बाद में बोलना नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, फिर मैंने तो सबके साथ अच्छा किया, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हुआ। भाव, सोच, बोल, व्यवहार, ये एनर्जी है जो मैं आत्मा क्रिएट करती हूं और मुझसे निकलकर बाहर जाती है, ये कर्म है। मेरी हर सोच एनर्जी है, मेरा बोल एनर्जी है, मेरा व्यवहार एनर्जी है। ये एनर्जी मुझसे निकलती है, बाहर जाती है, ये मेरा कर्म है। जो मेरे साथ होता है, परिस्थितियां आती हैं, लोगों का व्यवहार आता है, शरीर में उतार चढ़ाव आता है, काम कारोबार में उतार चढ़ाव आता है, जो मेरे साथ होता है वो एनर्जी है, जो मेरी तरफ आती है वो मेरा भाग्य है। एक बॉल हाथ में पकड़ेंगे, सभी पकड़ेंगे इस बॉल को, ध्यान से पकड़ना है। ये आपका कर्मा बॉल है, ठीक है, इसको पकड़ना, ये मेरा कर्मा बॉल है। कुछ भी करने से पहले, कुछ भी करने से पहले, एक निर्णय लेने से भी पहले सोच लेना, ये बॉल जो जाएगा ये परिणाम वापस आएगा, बॉल जाएगा परिणाम वापस आएगा। तो पहला रूल ये है कि लोग कैसा बॉल फेंक रहे हैं वो देखना नहीं है। सब लोग गलत फेंकेंगे तो उनको देखकर हम भी गलत फेंकते हैं कि सब लोग कर रहे हैं तो हम भी तो करेंगे। उनके पास परिणाम आएगा तो हमारे पास भी परिणाम आएगा। तो पहला रूल कलयुग में है, दूसरों को नहीं देखना वो कैसे कर्म कर रहे हैं, खुद चेक करना कि ये कर्म का परिणाम क्या होगा। हर कर्म का परिणाम है। अब पकड़िए, अब आपने ये जो आपके सामने दीवार है, मतलब जो मेरे पीछे है, आपके सामने है, आपको सोच समझ कर अपनी बॉल फेंकना। हमें परमात्मा सिखाते हैं सोच कर बोलो नहीं, सोच कर करो नहीं, सोच कर सोचो क्या ये बात सोचने लायक भी थी, क्योंकि सोच भी लिया ना तो भी एनर्जी बाहर निकल गई, वो कर्म है। अब पकड़िए, पकड़िए और सोच समझ कर किस स्पीड पर, किस डायरेक्शन में फेंकना चाहते हैं उस बॉल को, इस दीवार पर फेंकिए। फेंके फेंके सभी अच्छे से। अब जैसे ही ये मेरे हाथ से निकला, मतलब मैंने एक बात सोच ली, मैंने एक लाइन बोल दी, मैंने एक व्यवहार कर दिया, मेरी एनर्जी क्रिएट हो गई है। अब लॉ ऑफ कर्मा है कि जो आप भेजेंगे वही एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट होने वाली है, तो वो बॉल हमारे पास वापस आएगा। कोई बॉल इमीडिएटली आता है वापस, अभी फेंका अभी आ जाएगा, कोई बॉल कुछ दिनों बाद आता है, कोई बॉल कुछ सालों के बाद आता है, कोई बॉल 100 साल के बाद भी आ सकता है। आज अगर हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखें, ये कर्म है, समय पर नहीं खाते, समय पर नहीं सोते, कुछ भी खाते हैं, कहीं भी खड़े होके कुछ भी खाने लगते हैं, चेक नहीं करते इसमें क्या है, कर्म है। हम फेंकते जाते फेंकते जाते फेंक, हम कहते ठीक ठाक तो चल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो बॉल उसी टाइम वापस नहीं आएगी कि आज कम सोए कल बीमार हो गए, उसी टाइम बॉल नहीं आएगी। लेकिन कम सोए, सही नहीं सोए, रात को समय पर नहीं सोए, खाया नहीं ठीक से, सोचा नहीं ठीक से, तो वो बॉल कुछ सालों के बाद आती है, लेकिन बॉल आती जरूर है। कोई ऐसा कर्म हो नहीं सकता जिसका परिणाम नहीं आएगा। फिर से एक बार फेंके, चेक करना। आज से ये पक्का करो, कुछ भी करने से पहले इसका परिणाम, मुझ आत्मा की शक्ति बढ़नी चाहिए। जिनके साथ हम वो काम कर रहे हैं उनकी शक्ति बढ़नी चाहिए, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनकी शक्ति बढ़नी चाहिए। अगर मेरे कर्म से मेरी या किसी की शक्ति घटी, परिणाम आएगा। ठीक है, अब इसको फाइनल, ठीक है, हम फेंक रहे हैं और वापस आ रहे हैं। अब जब हम इस बॉल को फेंक रहे हैं, ये कर्म है, जब ये बॉल वापस आ रही है, ये मेरा भाग्य है। अब थोड़े दिन के बाद आपके सामने एक बात आती है, कहां से आ रही है, कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, ऐसे आ रही है। अब जैसे ही वो बात आएगी, ये नहीं कहेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये कहेंगे नहीं। क्या कहेंगे इसकी जगह, अब सोचो, एक थॉट फिट करके यहां रखनी है। कुछ भी ऐसे आएगा, बातें तो ऐसे ही आएंगी ना, सामने से आएंगे हमारे। अब हाथ करिए, ऐसा बात ऐसे आती है अपने सामने से, अचानक कोई मुझे कुछ ऐसे कह देता है, अचानक कोई मुझे धोखा दे देता है, ये बातें ऐसे आती हैं। अचानक मेरे शरीर में कोई रोग आ जाता है, अचानक मेरे घर में किसी को कुछ होता है, बात ऐसे आती है। जो भी बात ऐसे आएगी, हाथ पकड़ के रखना, जो भी बात ऐसे आएगी, बॉल कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, ऐसे आ रही है। कोई भी बॉल इस डायरेक्शन में क्यों आएगी, अब करो हाथ चेंज, क्यों भी कोई भी बॉल ऐसे क्यों आएगी, पहले वो ऐसे गई थी, जब तक कोई बॉल ऐसे जाएगी नहीं, वो बॉल ऐसे आएगी नहीं। तो अब जब भी कुछ ऐसे आए, अच्छा आए, बहुत बढ़िया आए, कब भी कुछ मुश्किल भी आए, एक संकल्प में मन को शांत करना, ये क्यों हुआ, बोलो ये बॉल मुझ आत्मा ने पहले फेंकी थी, ये मेरे कर्म का परिणाम है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब ये हर एक ने ध्यान से सोचना है, मैंने पहले बॉल फेंकी थी, वो बॉल आई है, अब ये चेक करना, जब ये आ रही है तो मेरे पास अब कौन सी पावर है, क्या अब मेरे हाथ में कुछ है, क्या अब मेरे हाथ में कुछ है, चेक करो। परिस्थिति आई, क्या अब मेरे हाथ में कुछ है, क्या हम कुछ कर सकते हैं, यस नो, कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते पक्का, हाँ भैया आप एक मिनट खड़े होंगे। अब आप ये देखो, ये भाई साहब यहां खड़े हैं, ठीक है, अभी मैं इतने हजार भाई बहनों के सामने इनसे मैं गलत व्यवहार करूं, सबके सामने इनको गलत बोलूं, इनको जोर जोर से चिल्ला के बोलूं, अपशब्द बोलूं, अपमान करूं, और ये आप सबके लिए है, तो बॉल आपके लिए कौन से डायरेक्शन में आ रही है, कोई आपके साथ ऐसे गलत कर रहा है, ठीक है, तो ये एनर्जी ऐसे जा रही है। सबसे पहले इनको ये याद रखना पड़ेगा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलिए लाइन को कंप्लीट कीजिए, मेरे साथ इनका मन कहेगा ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो क्या आंसर है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने कभी ना कभी ये एनर्जी फेंकी थी। पहले तो मन को फुल स्टॉप लगाओ, क्योंकि नहीं तो मन बोलेगा क्यों कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, इतने गलत कर्म हो जाते हैं। अब ये एनर्जी इनके पास ऐसे जा रही है, ये इनके पूर्व कर्मों की बॉल वापस जा रही है, राइट, क्लियर, हर एक हाथ उठाओ, क्लियर हो गया, ये इनके पूर्व कर्मों की बॉल जा रही है। अब जैसे ही मैं इनके साथ ये गलत तरह से व्यवहार करूंगी, इनको अपशब्द बोलूंगी, वो नेगेटिव एनर्जी इनके पास जा रही है, ये अब कैसा सोचेंगे, ये अब मेरे से कैसे बात करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, वो एनर्जी कौन से डायरेक्शन में इनके लिए, वो इनकी तरफ से एनर्जी जाएगी, राइट, तो ये इनकी प्रेजेंट बॉल आएगी। इनके साथ जो हो रहा है ये इनकी पहले फेंकी हुई वाली बॉल है, ये अब कैसा सोचेंगे बोलेंगे, ये इनकी नई वाली बॉल है। कौन सी बॉल में ज्यादा ताकत है, जो पहले की आ रही है या जो अब फेंक रहे हैं, जो पहले की आ रही है या जो अब फेंक रहे हैं। इसीलिए जो हो रहा है उसको देखकर निराश और हताश नहीं, अब क्या करना है, सारी शक्ति अब में है, पूर्व कर्म में नहीं, वर्तमान के कर्म में सारी शक्ति है। लेकिन हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, अभी अगर मैं इनके साथ गलत व्यवहार करूं, ये दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो इनकी नई वाली कर्मा बॉल कौन सी हो गई फिर? करेक्ट, इनके पास कौन सी कर्मा बॉल पहुंच रही थी? नेगेटिव। अब हाथ पकड़ो बॉल को और इसको फिक्स करो। जो हमारे पास आ रही है बॉल वो नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब किसी का गलत व्यवहार, मेरे शरीर में कोई बीमारी, मेरे काम में कोई रुकावट, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही। अब हाथ रखो, मेरे जीवन में एक नेगेटिव बॉल आ रही है। ये नेगेटिव बॉल क्यों आ रही है? मैंने पहले फेंकी थी, वो मेरे पास वापस आ रही है। कितनी भी बड़ी और कितनी भी नेगेटिव हो, मैं आत्मा अब कैसे सोचूंगी, अब कैसे बोलूंगी, अब कैसे व्यवहार करूंगी, वो मेरी प्रेजेंट बॉल होगी। और मेरा भाग्य आने वाली बॉल नहीं, मेरा भाग्य मेरी नई वाली बॉल क्रिएट करता है। तो सारी पावर किसके पास है? सारी पावर किसके पास है? उंगली रखो उनके ऊपर, किसके पास है सारी पावर? मुझ आत्मा के पास सारी पावर है। अब इनको देखो, इनकी जगह अपने आप को रखो और ये फाइनल करो कि मैं इनके साथ इतना नेगेटिवली बात कर रही हूं, इन्होंने जो नई बॉल भेजनी है अभी, किस किस की लाइफ में कोई ऐसा है जो नेगेटिव बॉल भेज रहा है आपको कभी ना कभी, घर पे, ऑफिस में, पड़ोसी भी हो सकता है कभी कभी, तो हर रोज कुछ ना कुछ एक फेंक देते हैं ऐसा है। किस किस के पास है, हाथ उठाओ, छोटा बड़ा कुछ भी है ना, ठीक है। तो वो नेगेटिव आ रहा है, मैंने कभी भेजा था, अब इनके पास कौन सी ऑप्शन है, ये प्रेजेंट कर्मा कैसा कर सकते हैं? अगर मैंने नेगेटिव भेजा और इन्होंने भी नेगेटिव फिर से भेज दिया, नेगेटिव मतलब ये नहीं कि इन्होंने भी चिल्ला दिया, इन्होंने मन में रो दिया, इन्होंने मन में वो बात को पकड़ ली, क्षमा भी नहीं किया, इन्होंने 10 लोगों को बताया, पता उन्होंने क्या किया, पता उन्होंने क्या किया, पता उन्होंने क्या किया। तो पहले तो नेगेटिव बॉल थी जो वापिस आई थी जीवन में, अभी भी कौन सी वाली भेज दी? बताइए कौन सी वाली भेज दी अभी भी, अच्छे से बोलो ना, खुद को सुनाना है, मुझे आंसर पता है, मैंने सीखा इधर आने के बाद। कौन सी वाली बॉल भेज दी अभी? नेगेटिव। क्या नेगेटिव आने वाली बॉल को रिटर्न हमें नेगेटिव भेजना है? तो नेगेटिव आने वाली बॉल का रिटर्न हमें क्या भेजना है? कितना पॉजिटिव? जितनी बात नेगेटिव होगी, मतलब जितनी बात मुश्किल होगी, उतनी हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? ऊपर, कितना ऊपर, कितना ऊपर, इतना ऊपर से नहीं चलेगा अभी, इतना 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 ऊपर। जितनी परिस्थिति मुश्किल होगी उतनी मेरी स्थिति क्या होनी चाहिए? ऊपर 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 ऊपर। आपका मन हो ना डिस्टर्ब होने के लिए, तो जीवन की छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब होके पूरा करो, लेकिन जीवन की बड़ी बात में कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकते। अगर जीवन की बड़ी बात में डिस्टर्ब हो गए, पहले ही एक मुश्किल कार्मिक अकाउंट सामने आया है उसमें डिस्टर्ब हो गए, तो वो कार्मिक अकाउंट तो बहुत उलझ जाएगा सारा। तो सपोज हम एक कलर देते हैं कि मेरे जीवन में एक ब्लैक रंग की बॉल आ रही है, तो वापस कौन से रंग की भेजनी है? भेजो भेजो भेजो, कौन से रंग की भेजनी है? कितनी व्हाइट? अब ये मेरे को व्हाइट बॉल भेज सकते हैं? क्या करना होगा इनको व्हाइट बॉल भेजने के लिए? क्या करना होगा इनको व्हाइट बॉल भेजने के लिए? कल हमने किया था ये, कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, एक्सप्लॉइट नहीं होना है, लेकिन सिर्फ उनका संस्कार स्वभाव थोड़ा सा ऐसा है, तो ना हमें गुस्सा करना है, ना हमें दुखी होना है, ना हमें हर्ट होना है, क्योंकि वो सब तो हम क्रिएट करते हैं, लेकिन एक संकल्प में क्षमा करके, और हायर कर्मा क्या है, हमें उस आत्मा के लिए दुआएं भेजने हैं। बोलिए क्या करना है? हमें उस आत्मा के लिए दुआएं भेजनी है। कल हमने क्या देखा था? दुआ थी, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत शक्तिशाली आत्मा है, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, जो नहीं है वो बोलना है। अब जैसे ही इन्होंने मेरे लिए दुआ भेजी, मेरे लिए एक अच्छा संकल्प किया, मेरे लिए एक शुभ संकल्प किया, इनका कर्मा बॉल किधर चला गया? कौन सी डायरेक्शन में गया? अच्छा संकल्प भेजा ना, तो स्थिति कहां गई? ऊपर चली गई। तो जब इनका कर्मा बॉल ऊपर जाएगा, सबसे पहले कौन ठीक हो जाएगा? वो खुद। मेरी नेगेटिविटी इनके ऊपर कोई असर नहीं करेगी। मैं एक बार नहीं, मैं हर रोज इनके साथ गलत बात करूं, मेरी नेगेटिविटी इनके ऊपर कोई असर नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने अपनी स्थिति को क्या बना दिया? ऊपर। कैसे बना दिया? मुझे दुआएं भेजकर, मुझे क्षमा करके। हम कहते हम क्यों लोगों को क्षमा करें, उन्होंने गलत किया। हम लोगों को क्षमा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनको क्षमा किया ये संकल्प करके। हम किसको क्षमा कर रहे हैं बताइए? उंगली रखो, किसको क्षमा कर रहे हैं? खुद को कर रहे हैं, खुद के मन को लाइट कर रहे हैं, खुद के शरीर को बीमार होने से बचा रहे हैं। हमेशा याद रखना, जो गलत करता है, या तो देश का कानून उनके ऊपर काम तो करता ही है, कोई ऐसी बातें होती हैं जो देश के कानून के दायरे में नहीं आती हैं, लेकिन कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा किसी भी आत्मा को नहीं छोड़ता है, किसी को नहीं छोड़ेगा, ना किसी के पुण्य को छोड़ेगा, ना किसी के गलत को छोड़ेगा। इसलिए अगर हम सब मिलकर, आप अभी हॉल में 3,000 हो ना, मैंने इनके साथ गलत व्यवहार किया, आप सब मिलकर कहो कि कोई बात नहीं, आपने कर दिया, हम आपको क्षमा करते हैं, आप सब मुझे क्षमा कर सकते हैं, लेकिन लॉ ऑफ कर्म मुझको नहीं छोड़ेगा। वो जो मैंने कर्म किया, उसका परिणाम मेरे पास आना ही आना ही आना है। तो जब हम किसी को क्षमा करते हैं, तो हम एक्चुअली किसको क्षमा कर रहे हैं? हम एक्चुअली किसको क्षमा कर रहे हैं? किसको क्षमा कर रहे हैं? रखो उंगली, किसको क्षमा कर रहे हैं? हाथ कैसे हो गया? ऐसे। दर्द लिया तो हाथ कैसे हो रहा था? ऐसे। सत्युगी देवी देवताओं का हाथ कैसे होता है? ऐसे। हमें क्या बनना है? देने वाली आत्मा, लोगों का दर्द लेने वाली आत्मा नहीं, लोगों को शक्ति देकर उनको हील करने वाली आत्मा। किस किस के पास कोई नाम है जिसको क्षमा करना है? चलो 30 सेकेंड्स, आंख बंद करो, उनको सामने लेकर आओ, लेकर आओ उनको सामने, और इसको थोड़े दिन के लिए रोज रिपीट करना है। उनको देखो और उनसे कहो, बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप। मैंने कुछ आपके साथ किया होगा जो मुझे याद नहीं है, मैं आत्मा आपसे उस दर्द के लिए क्षमा मांगती हूं। हमें हमारे पूर्व कर्म याद नहीं होते हैं, लेकिन जब तक हमने किसी को घाव दिया न हो, सामने से दुख दर्द आने नहीं वाला है। तो अगर मेरे जीवन में किसी ने कुछ किया है, तो मैंने कभी ना कभी तो कुछ किया ही था, तो सबसे पहले अपनी उस पुरानी गलती के लिए उस आत्मा से क्षमा मांगे। उनको जाके बोलना नहीं है, ये मन में करना है, मैंने जो आपके साथ किया था उसके लिए मैं आत्मा क्षमा मांगती हूं। आज जो आप मेरे साथ कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको क्षमा करती हूं। पूर्व कर्मों के लिए मैं क्षमा मांगती हूं। वर्तमान आप जो मेरे साथ कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको क्षमा करती हूं। पास्ट कार्मिक अकाउंट को पूरा करते हैं, और आज से मैं आत्मा एक नया कर्मों का खाता खोलती हूं, जिसमें मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं, दुआएं और दुआएं। रिपीट करें एक बार फिर से, उनको बोले, अब आप सब रिपीट करो मेरे पीछे लाइन में, रिपीट करते हैं, पास्ट इज पास्ट, उनको देखते हुए बोलना, हाँ, पास्ट इज पास्ट, बात को खत्म करते हैं। मैं आत्मा आपको क्षमा करती हूँ। अच्छे से बोलेंगे सभी, मैं आत्मा आपको क्षमा करती हूँ। आज से मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं दुआएं दुआएं। फिर से एक बार बोलते हैं, सब करेंगे। बीती बात को खत्म करते हैं। मैं आत्मा आपको क्षमा करती हूं। आपने जो मेरे साथ किया, आपके साथ उससे भी ज्यादा गलत होना चाहिए। नहीं बोला गया ना, नहीं बोला जाएगा, कभी नहीं बोला जाएगा। हम देवी देवताओं की वंशावली हैं, हम देवी देवताओं की वंशावली हैं। हम ऐसे ही बोल देते हैं, दुआ देना कितना मुश्किल है, किसी ने मेरे साथ गलत किया, मैं कैसे उसको दुआ दूं। दुआ देना तो बहुत आसान था, आप सबने बोल दिया, और ऑपोजिट आपने बोला नहीं, आपको तो सिर्फ रिपीट करना था। कर्मा तो वो मेरा था, आपको सिर्फ रिपीट करना था, तो भी आप रिपीट नहीं कर सके, तो कौन सा आसान होता है, कौन सा आसान होता है। दुआ हमेशा याद रखना, हम देवी देवताएं हैं, हमारे पूर्वज, तो हमारे हाथ भी कैसे होने चाहिए, हमेशा देने वाले। और अभी तो नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, हर रोज देवी का पूजन हो रहा है, देने वाली एनर्जी है हम। तो कभी नहीं कहना मैं कैसे दुआ दूं, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। किसी ने कुछ भी किया हो, हमारा संस्कार है दुआएं देना, और दुआएं देखकर उस कार्मिक अकाउंट को क्या करना, क्लोज। नहीं तो वो कार्मिक अकाउंट और उलझता जाएगा। अब एक चीज हमेशा याद रखना, कभी कभी हमने किसी के लिए बिल्कुल कुछ गलत नहीं सोचा होता। किसी के लिए क्या, अपने बच्चे को देख लो, उसके लिए हम श्रेष्ठ के अलावा और कुछ सोच नहीं सकते हैं। हमने पूरा जीवन त्याग किया, तप किया, उनकी सेवा की। कभी कभी बड़े होकर वो ही मुड़कर कुछ ऑपोजिट कर देते हैं, होता है, ऐसा नहीं होता, ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट कर देते हैं। तो फिर मेरा मन कहेगा ये कौन सा लॉ ऑफ कर्मा है, मैंने इतना किया इतना किया इतना किया, और मुड़कर वहां से बॉल तो अलग ही रंग की आ गई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमेशा याद रखना है, एक बार वो फिर से बॉल फेंको, उस दीवार पे फेंको। अब आपने ये फेंक दी बॉल, और बॉल फेंकने के बाद शरीर छोड़ दिया, नया शरीर ले लिया, तो बॉल वापस आएगी नहीं आएगी, आएगी या नहीं आएगी, आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं ये बाद में वापस नहीं आना चाहिए, वो उधर का उधर ही खत्म हो जाए। अगर उधर का उधर खत्म हो गया ना, जो इतनी अच्छी वाली बॉल जा रही है वो भी नहीं आएंगे, उधर के उधर ही खत्म हो जाएंगी सारी। हमेशा याद रखना, कर्म शरीर ने नहीं किया है, परिणाम शरीर के पास नहीं आने वाला है, कर्म किसने किया। जैसे आज हम सब ने एक ड्रेस पहनी है ना, हर एक अपनी ड्रेस को देखो, किसी ने सफेद, किसी ने लाल काली, ये पहनी है ना, हम इस ड्रेस में कर्म करते हैं, कल हमारी ड्रेस बदल जाएगी, तो क्या वो कर्म का परिणाम नहीं आएगा, आएगा। ड्रेस बदलने से क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह ये शरीर भी हमारी ड्रेस है, मेरा चोला है, मैंने इस चोले में कुछ कर्म किया। अब सपोज ये भाई साहब हैं, इस जन्म में हम दोनों ने मिलके बिजनेस किया, ठीक है, चेक करना, इतना अच्छा कमाया, इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ, मतलब कमाल ही कर दिया हमने तो। लेकिन फिर उसके बाद मेरी नीयत खराब हो गई, मैंने इनको धोखा दे दिया, मैंने इनको उस बिजनेस से ही निकाल दिया, इनका धन चला गया सारा, इनका मन कितना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि उनके शरीर में भी रोग आ गया, उनका परिवार उथल पुथल हो गया, मेरे एक कर्म की वजह से, मेरे एक कर्म की वजह से वो आत्मा, उनका पूरा परिवार, मन दुखी, शरीर बीमार, बच्चे बिखर गए, मैं बिल्कुल परफेक्ट, मैं मौज में चल रही हूं, मेरे पास इतना धन आ गया, मेरे घर में सब परफेक्ट चल रहा है, लोग कहेंगे ये क्या हुआ, वो तो इतना अच्छा था, इन्होंने इतना गलत किया, लेकिन ये तो मौज में चल रहे हैं। शॉर्ट टर्म नहीं देखना, मुझ आत्मा ने वो कर्म कर दिया है, अब क्या होगा, वो अलग चल रहे हैं, मैं अलग चल रही हूं, कुछ सालों बाद मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, कुछ सालों के बाद वो आत्मा शरीर छोड़ेंगे, कहीं ना कहीं हम फिर से मिलेंगे, ना वो मुझे पहचानेंगे ना मैं उनको पहचानूंगी, ना उन्हें वो पुरानी बात याद होगी ना मुझे वो पुरानी बात याद होगी, लेकिन जब हम आएंगे, जिस भी रिश्ते में आएंगे, मैंने ऐसा कर्म किया था जिससे उनका धन मन तन संबंध सब बिखर गया था, जब हम उस रिश्ते में आएंगे ऑटोमेटिकली वो ऐसा कुछ करेंगे जिससे मेरा धन मन तन सब हिल जाएगा। आना ही है उस आत्मा ने हमारे जीवन में, आना ही है। भगवान कहता है आपके कर्म और भाग्य के बीच मैं भी नहीं आ सकता हूं, मैं आपको सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करने की शिक्षा दे सकता हूं, लेकिन आपने जो कर्म कर लिया उस भाग्य के बीच मैं भी नहीं आ सकता हूं। अब आप सोचो जिसके साथ मैंने ऐसा कर्म किया और जिसका परिणाम इतना भारी आने वाला है, तो वो मेरे पड़ोसी थोड़ी बनकर आएंगे, क्या बनकर आएंगे, क्या बनकर आएंगे, वो मेरे बिल्कुल इमीडिएट सर्कल में आएंगे ना रिश्तों के अंदर। तो हम जब आजकल कहते हैं मेरे बच्चे ने ऐसा क्यों किया, मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया, मेरी बहन ने ऐसा क्यों किया, तो याद रखना वो बच्चा भाई बहन सिर्फ इस जीवन का रिश्ता है, ये हिसाब किताब तो उस आत्मा के साथ है जिसको हम पहले किसी और रिश्ते में मिले थे और हम कुछ करके आए थे जिसका बस परिणाम सामने से आया है। तो जब वो भी आता है ना, तो अपने कार्मिक अकाउंट को स्वीकार करके श्रेष्ठ स्थिति रखते हुए, दुआएं देते हुए उस हिसाब किताब को जल्दी जल्दी पूरा करो और उस कार्मिक अकाउंट को जो उस आत्मा के साथ है उसको भी परिवर्तन करो। ऐसे नहीं फिर से उनके प्रति नफरत, फिर से उनके प्रति ग्लानि, फिर से दुनिया में उनके बारे में निंदा, फिर हम फिर मिलेंगे। हमेशा याद रखना हम फिर मिलेंगे, और जितनी अगली बार हम मिलेंगे वो कार्मिक अकाउंट और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हर रोज अपने कर्मों को चेक करो। हम यहाँ पर रोज रात को एक चार्ट लिखते हैं, आज मैंने क्या गलत सोचा, एंड गलत सोचा मतलब नहीं इसका बुरा हो जाए, ऐसे वाला गलत नहीं, लेकिन इतना भी सोचा ना ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये भी दूसरे की शक्ति को घटाता है। राय देना होता है लेकिन साथ में पहले परमात्मा को याद करके दुआएं देनी होती है। तो हम रोज रात को अपना चार्ट चेक करते हैं, आज कैसे सोचा, आज किसी से कुछ गलत बोला क्या, आज व्यवहार में तो नहीं कोई गलती आ गई, रोज उसका चार्ट लिखते हैं। कौन कौन रेडी आज से करने के लिए? देखो रोज रोज की अगर बैलेंस शीट चेक हो जाए ना, तो 31 मार्च को कुछ नहीं करना पड़ेगा, रोज रोज का चेक करके पूरा करेंगे। रोज रात को सोने से पहले किसी के लिए भी थोड़ा सा भी गलत सोचा, गलत मतलब थोड़ा सा भी निंदा मन में की, रात को सोने से पहले मन से उनको क्षमा उनसे मांगनी है। किसी ने हमारे साथ गलत किया, सोने से पहले क्षमा उनको करना है, सबका शुक्राना सोने से पहले करना है, परमात्मा का शुक्राना सोने से पहले करना है। कोई मुझसे आज गलती हुई, खुद को भी क्षमा करके कल सुबह के लिए परिवर्तन करने के लिए खुद को प्रेरित करना है, ये सब कुछ रात को सोने से पहले करना है। अगर सोने से पहले नहीं किया तो वो बातें बहुत गहरी चली जाती है, हमारी सब कॉन्शियस में चली जाती है, हमें 10 साल बाद भी उनकी वो बात भूलती नहीं है, क्योंकि हमने सोने से पहले उस कर्म को ठीक नहीं किया था। और वैसे भी आजकल हम एक ऐसे युग में चल रहे हैं, पता ही नहीं कब आत्मा शरीर छोड़ देती है। किस किस को बिल्कुल सब कार्मिक अकाउंट ठीक करके एकदम लाइट आगे जाना है, हैप्पी हैप्पी जाना है ना। आपको पता है जब अंतिम संस्कार होता है तो पंडित जी क्या करते हैं, पंडित जी वहां लकड़ी देते हैं सबको, कहते हैं अब इसको तोड़ो, देते हैं ना लकड़ी अंतिम संस्कार के बाद, इसको तोड़ो। उसका मीनिंग क्या है, मुझ आत्मा का और ये आत्मा जो आगे गई, हमारा हिसाब किताब खत्म। वो लकड़ी तोड़ना तो सिर्फ सिंबॉलिक होता है, वो हमें जीते हुए करना है कि अपने कार्मिक अकाउंट को श्रेष्ठ बनाकर रखना है। हमेशा लाइट रहेंगे, जब जाने का समय आएगा लाइट जाएंगे, और फिर जब मिलेंगे तो बहुत हैप्पी हैप्पी रिश्ते में मिलेंगे। उसके लिए रोज क्षमा करें, रोज क्षमा मांगे, रोज दुआएं दें, और रोज अपने कर्मों को क्या करें, ऊपर 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 उठाएं। कौन रेडी है चार्ट लिखने के लिए रोज रात को? समय नहीं मिलता। आजकल कितनी बार ऐसा हुआ कि रात को कोई सोए सुबह नहीं उठे? कौन कौन जानता है किसी एक को ऐसे जो रात को सोए सुबह नहीं उठे? तो ये चेकिंग का टाइम नहीं होता? सपोज मैं रात को सोने से पहले किसी से झगड़ा किया, सपोज मैंने रात को सोने से पहले किसी को व्हाट्सएप किया, ये 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 टिंग टिंग चलता गया अपना झगड़ा। आजकल तो व्हाट्सएप पे ही झगड़ा होता रहता है, और मैं आत्मा सो गई और नींद में मुझे आत्मा ने शरीर छोड़ा, क्या लेकर गए साथ में? तो कोई भी घाव अपने साथ जाना नहीं है, कोई भी दर्द अपने साथ जाना नहीं है, कोई भी नाराजगी अपने साथ जानी नहीं है। वो आत्मा गर्भ में प्रवेश करेगी, उसका भाग्य बनना है, उस बच्चे की जन्म पत्री बननी है। अगर हम रोज चार्ट रखेंगे ना और रोज अपने हिसाब किताब को ठीक करते रहेंगे, फिर किसी भी टाइम जाना पड़ जाए। हम यहां पर सीखते हैं हर घड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है, उस तरह जीवन जीना है। एवरी मिनट कैन बी माई लास्ट मिनट, हर घड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है। टाइम नहीं मिलेगा किसी को ठीक करने के लिए कुछ भी। जीना उस तरह है ताकि जब जाएं श्रेष्ठ कर्मों का खाता लेकर जाएं, और जीते हुए भी तो हमारा भाग्य उन श्रेष्ठ कर्मों से ही बनता है, ठीक है। अगर ऐसे जिएंगे तो आत्मा जब शरीर छोड़ के आगे जाएगी ना, तो जिस जीवन जिस परिवार में वो बच्चा आता है, आपको पता है पंडित जी क्या बोलते हैं वहां पर? पंडित जी बोलते हैं ऐसा बच्चा आया है, ऐसा बच्चा आया है, खुद तो श्रेष्ठ भाग्य लाया ही है, लेकिन वो ऐसा बच्चा आया कि आपके पूरी परिवार के भाग्य को बदल देगा। वो ऐसा बच्चा आता है फिर उनके घर, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी लेकर आता है, दुआएं कमा कर लेकर आता है, पुण्य का खाता कमा कर लेकर आता है। अब लास्ट एक बात चेक करने हैं, अपने भाग्य पे कौन से कर्मों का असर पड़ रहा है। सबसे पहला है हमारा धन कमाने का तरीका। चार वर्ड्स होते हैं, इसको रिपीट करेंगे, धन बोलेंगे, धन, अन, मन, तन। फिर से रिपीट करें, धन, अन, मन, तन। तो सबसे पहली एनर्जी कौन सी हो गई? धन। हम धन कैसे कमाते हैं वो हमारा सबसे पहला कर्म है, क्योंकि उसी धन से हमारा अन्न आता है, उसी धन से हमारे बच्चों की परवरिश होती है, उसी धन से वो मकान बनता है जिसमें हम रहते हैं। वो धन कैसे आता है? कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे समाज में दुख दर्द फैलता है, बीमारी फैलती है। धन कमाने के समय याद रखना कि धन से ज्यादा दुआएं कमाने हैं। मेरे पास धन थोड़ा कम आ जाए, लेकिन जिनके साथ मैंने काम किया, जिनके लिए मैंने काम किया, दुनिया को जो मैंने दिया, उससे मेरे खाते में दुआएं आने चाहिए। आजकल धन कमाने में ही सबसे बड़ी गफलत हो रही है, धन कमाने में ही गफलत हो रही है सारी, क्योंकि कलयुग में एक दूसरे का ये नहीं चेक करते कि कैसे कमाते, ये चेक करते कितना कमाते हैं। तो हम सब कितना कमाने में भाग रहे हैं। कितना कमाते हैं इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे कमाते हैं वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना कमाते हैं उससे समान आता है, कैसे कमाते हैं उससे सुकून आता है। जितना कमाएंगे एक सेकंड में पीछे रह जाएगा, कैसे कमाएंगे अपने साथ जाएगा। तो किस पर ध्यान रखना है, किस पर ध्यान रखना है, बोलो ना, किस पर ध्यान रखना है, कैसे कमाएंगे। और जो इस पर ध्यान रखेंगे कि कैसे कमाएंगे, क्या वो कम कमाएंगे, क्या वो कम कमाएंगे। एक सिंपल एग्जाम्पल है, आप एक दिन काम के बाद घर पहुंचते पहुंचते एक दुकान पर रुके, दुकानदार को कहा चलो एक किलो फल दे दो। वो कहता है भाई साहब मेरे से नहीं लो, आज ताजा नहीं है। हम कहते दे देना भाई, पड़ा तो है, ठीक ठाक तो है। कहते नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ये आज ताजा नहीं है, आप ना उस दुकान से लो जाकर, उसके पास ताजा है। मिलते हैं ऐसे लोग या नहीं मिलते हैं? चाहे कम मिलते हैं आजकल, लेकिन मिलते तो है ना। हाथ उठाओ किस किस को मिलते हैं ऐसे लोग। देखो कलयुग के अंत में भी ऐसे लोग मिलते हैं। उस दिन उस आत्मा ने क्या किया, वो भी तो बिजनेसमैन है, वो 200 रुपए हमारे लिए एक छोटी रकम हो सकती है, उसके लिए वो 200 रुपए बहुत बड़ी रकम है। उस दिन उस 200 रुपए से उसने अपने बच्चे की फीस पे करनी थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने आपके बारे में सोचा। बिजनेस ऐसे होता है, ऐसे बिजनेस ऐसे नहीं होता है, बिजनेस ऐसे होता है। हाथ करो, बिजनेस भी ऐसे होता है। देने की इंटेंशन से बिजनेस करना है, धन तो अपने आप आएगा। चैरिटी नहीं करनी है, लेकिन दूसरे को देने की इंटेंशन से बिजनेस करना होता है। तो उस दिन उस फल वाले ने धन नहीं कमाया, लेकिन उस दिन उसने क्या कमाया, दुआएं कमाई। आप चार लोगों को जाके बोलोगे, बोले क्या कमाल का व्यक्ति मिला, मैं तो ले रहा था उसकी दुकान से, उसने कहा सामने वाली दुकान से जाके लो। उस दिन उसने धन नहीं कमाया, उस दिन उसने दुआएं कमाई। उसके बाद हम हमेशा कौन सी दुकान पे जाएंगे, उसके पास जाएंगे। जिन जिन को हम बताएंगे वो कौन सी दुकान पे जाएंगे, उसके पास जाएंगे, और आंख बंद करके खरीदेंगे उससे। हम बोलेंगे तोल दे भाई, डाल दे जो डालना है तूने। उस दिन उस आत्मा ने धन नहीं कमाया, उस दिन उसने दुआएं कमाई, लेकिन जितनी उसने दुआएं कमाई अब वो अपनी क्षमता से ज्यादा धन कमाएगा उसके बाद। ये लॉ है, ये लॉ ऑफ कर्म है। लेकिन उस दिन अगर उसने चार अच्छे एप्पल के नीचे एक सड़ा हुआ सेब दे दिया हमें, उस दिन उसने धन कमाया। हमने चार बार उसके बारे में सोचा, कैसा इंसान है, सड़ा हुआ एप्पल मुझे दे दिया। अब हमारे लिए 20-30 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे साथ उसने ऐसा किया क्यों? तो ये होता है दुआओं का ऑपोजिट। और उस दिन उसने दुआएं तो कमाई नहीं, लेकिन उसके बाद उसका धन भी घट जाएगा। तो हमेशा आज से जाने के बाद सबसे पहले अपने धन कमाने के तरीके को जितना ऊंचा लेकर जा सके, जितना ऊंचा, ये नहीं देखना लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमारे घर में धन ठीक नहीं आ रहा ना, इसीलिए चीजें बिखर रही हैं। और धन का मतलब ये नहीं है कि हम बिजनेस करते हैं, वही हम नौकरी करते हैं कहीं, बिजनेस हमारे हाथ में नहीं है, वो तो दूसरा कर रहा है। मैं नौकरी करती हूं अगर, उसमें भी मुझे ध्यान देना है कितनी सिंसियरिटी, जितनी वो मेरे से चाहे उससे ज्यादा करना चाहिए। जहां काम करते हैं उनके बारे में कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। हम अपने काम की जगह के बारे में बहुत गलत बोलते हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे करते हैं, वहां ऐसे होता है। वहां से आपका धन आ रहा है घर। बहुत लोग हैं इस समय दुनिया में, एक सेकंड में उनकी नौकरी छूट रही है। जहां से हमारा धन आ रहा है उस जगह का हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, दुआएं। उस जगह को कभी दुआओं का ऑपोजिट नहीं भेजना, वो दर्द भी वो धन में ही लगकर आपके घर आएगा। ठीक है, करेंगे ध्यान अटेंशन, राइट। हमेशा जितना हमारे से अपेक्षा हो ना किसी को, उससे थोड़ा ज्यादा करना है। आपको पता है जब हम सब्जी लेने जाते हैं, चाहे हम 300, 400, 500, 1000 रुपए की भी सब्जी ले ले, कोई सब्जी वाला ना वो थोड़ा सा धनिया फ्री में दे देता है उसके साथ। कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगती है, 1000 रुपए वाली सब्जी या वो थोड़ा सा फ्री का धनिया? क्यों वो फ्री का धनिया अच्छा लगता है? एक्स्ट्रा मिला, एक्स्ट्रा। इसी तरह किसी के लिए भी हम काम कर रहे हैं ना, थोड़ा एक्स्ट्रा सिंसियर करना, थोड़ा और एक्स्ट्रा अच्छे से करना। जो काम कर रहे हैं उसके लिए सैलरी मिलेगी, जो थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना उसके लिए दुआएं मिलेंगी, और वो दुआएं अपने घर में अपने परिवार को चली जाएंगी। एक्स्ट्रा, ये नहीं सोचना बाकी नहीं कर रहे, मैं क्यों करूं, कोई जल्दी नहीं आता, मैं क्यों जल्दी आऊं, कोई ऐसे नहीं करना। अपने कर्म की क्वालिटी को हमेशा ऊंचा ऊंचा ऊंचा। तो धन कैसे आएगा? दुआओं की तरह। इसलिए श्री लक्ष्मी जी को कैसे दिखाते हैं? कमल आसन के ऊपर। कीचड़ में रह रहे हैं वो कमल, लेकिन कैसा है? कीचड़ से ऊपर। देवी का हाथ कैसे है? ऐसे। मतलब धन कैसे कमाना है? ऐसे। अन्न कैसा खाना है? सात्विक। आज कौन कौन एक प्रतिज्ञा करके जाने के लिए रेडी है? कल एक प्रतिज्ञा हमने की थी, कौन सी प्रतिज्ञा की थी कल हमने? कल हाथ उठाया था, कौन सी प्रतिज्ञा की थी? लो, आपको अभी याद नहीं तो फिर क्या होगा हमारा मंडे के पंत। कल हमने प्रतिज्ञा की थी कि हम अपने फोन और टीवी से कोई ऐसा कंटेंट नहीं लेंगे जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की वाइब्रेशन होगी। प्रतिज्ञा रिवाइज कर ले एक बार। और हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और हमारे प्रभाव से वो बच्चों का भी मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पक्का फाइनल याद रहेगा ना? देखना देखना डिलीट कर देना वीडियो अगर आएगा ऐसा फोन के ऊपर। आज उसमें और एक ऐड करते हैं, हम अन्न वैसा खाएंगे जिसमें किसी को दर्द और दुख ना दिया हो। जब हम नॉनवेज मांसाहारी भोजन खाते हैं उसमें दर्द है, उसमें दुख है, उसमें चीख है, उसमें रोना है। जो नवरात्रों में हम सात्विक खाना खाते हैं, सात्विक मतलब ये नहीं कि कच्चा खाना खाना है, सात्विक मतलब शाकाहारी भोजन। किसी की मृत्यु हो मुझे स्वाद देने के लिए, और वो मृत्यु भी नहीं है, वो हिंसा है, वो डेथ नहीं है, वो मर्डर है। वो एक नेचुरल डेथ नहीं है, वो मर्डर है। किसके लिए? मेरे को टेस्टी खाना खाना है, इसलिए। ये कौन से कर्म के खाते में जाएगा? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम कौन सी वाइब्रेशन का खाना खा रहे हैं? जैसा अन्न होता है वैसा, रिपीट, जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। तो उस भोजन में, उस स्लॉटर हाउस का और फिर उस पशु का दर्द, चीख, रोना, हिंसा, गुस्सा, आक्रोश, डर, वो सारी वाइब्रेशन है, और वो सारी वाइब्रेशन के हार्मोन भी उस बॉडी में सीक्रेट हो जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मृत्यु। हमेशा याद रखना, किसी की मृत्यु हमें स्वास्थ्य नहीं दे सकती। डेथ की एनर्जी किसी को हेल्थ नहीं दे सकती, प्रोटीन दे सकती है सिर्फ, डेथ कभी हेल्थ नहीं दे सकती। कौन कौन 3 महीने के लिए प्रयोग करने के लिए रेडी है? सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना, छोड़ना नहीं। जो जो खाते हैं अभी, 3 महीने के लिए प्रयोग करो। ये 3 महीने के लिए शाकाहारी भोजन, टेस्टी टेस्टी खाना बनाओ, लेकिन शाकाहारी भोजन कौन 3 महीने के लिए प्रयोग करने के लिए रेडी है? वो हाथ उठाओ जो अभी खाते हैं, उसमें से हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। बहुत सारी दुआएं मिलेंगी सबको आपको, तो संकल्प करना सिर्फ इजी हो जाएगा। अच्छे से हाथ उठाओ, वेरी गुड। फोटो खींच लो भैया, बहुत अच्छी फोटो, देखो कितने अच्छे अच्छे हाथ उठे। ऐसी वाली फोटो खींचा करो ना, ऐसी फोटो मजेदार होती है। 3 महीना जब आप करके देखेंगे ना, 3 महीने में आपको, आपका पेट भी बहुत लाइट फील होगा और आपका मन भी बहुत लाइट फील होगा। उसके बाद आप कभी मुड़कर उस चीज की तरफ जा ही नहीं सकते, जाएंगे ही नहीं, नेचुरल हो जाएगा। नवरात्रों के टाइम हम शाकाहारी भोजन क्यों खाते हैं? हम दिव्यता और शक्ति का आह्वान कर रहे हैं। तो दिव्यता और शक्ति का आह्वान यहां से नहीं आने वाली, दिव्यता और शक्ति यहां से, दिव्यता और शक्ति का आह्वान कर रहे हैं तो हम शाकाहारी भोजन खाते हैं। तो 9 दिन थोड़ी चाहिए दिव्यता और शक्ति, सिर्फ कितने दिन चाहिए? कितने दिन चाहिए? हर रोज। तभी तो रावण जलेगा ना 10वें दिन। दिव्यता लाएंगे, रावण जलेगा, देने वाला दिया जल जाएगा और एक दिए से दूसरा दिया, दूसरे दिए से तीसरा दिया जलेगा, सृष्टि पर दिवाली आ जाएगी, राम राज्य आ जाएगा, स्वर्णिम भारत आ जाएगा, लेकिन मुझे वो देने वाली आत्मा तो बनना पड़ेगा ना पहले, है ना। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री ने कहा राम राज्य आना है, हम सब ने ताली बजा दी, हमने कहा हाँ हाँ आना है आना है। अक्टूबर हो गया, आया राम राज्य, आया। उन्होंने हमें एक संदेश दिया था कि राम राज्य आना है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग है हमें कुछ ऐसा करना होगा जो राम राज्य हम सबको मिलकर लाना है, वो स्वर्णिम भारत हमको मिलकर लाना है। कैसे आएगा? संस्कार परिवर्तन से, ठीक है। तो शाकाहारी, और कल के सेशन के बाद ना दो भाई बहने पीछे आए थे, कहते बताओ कितना नशा की आदत फैलती जा रही है, आपको लग रहा है फैलती जा रही है नशे की आदत बहुत समाज के अंदर, आपको लग रहा है बच्चों का जीवन उससे खराब हो रहा है, हाथ उठाओ कौन कौन को लगता है। हम शायद उनको नहीं रोक पाते, हम शायद समाज को भी नहीं बदल पाते, लेकिन अगर हम एक अपनी आदत को बदल देना, हमारी आदत की वाइब्रेशन किसी न किसी और को बदल देगी। जो चीज मेरे मन और शरीर की शक्ति को घटाता है, आज आप इस कैंपस में बैठे हैं, इस कैंपस में अनेकों ने अपनी ऐसी आदतें संकल्प से छोड़ी हैं, और क्योंकि बहुतों ने यहां छोड़ी हैं, बहुत जगह पर लोग जाते हैं अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए, वहां जाएंगे ना मेरी ये मन्नत पूरी हो जाएगी, यहां हम आते हैं अपने विकार छोड़ने के लिए। तो यहां एक संकल्प आज सिर्फ करो, छोड़ो सोचो मत होगा नहीं होगा कैसे होगा, बस संकल्प करो कि परमात्मा मैं आज आपको सामने रख अपनी ये आदत नशे की, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो इवन तंबाकू है, मैं आज वो आदत आपके यहां स्वाहा करके जा रहा हूं, ये आदत मेरे साथ वापस नहीं जाएगी। वैसे भी चार दिन यहां तो किया नहीं है कुछ भी, चार दिन हो गए तो आदत खत्म होना वैसे ही शुरू हो जाता है। एक एक करेगा तभी बच्चे बचेंगे, और जब हम ये एक एक करेंगे तभी भारत क्या बनेगा? स्वर्णिम भारत बनेगा। कौन कौन बनाना चाहता है? तो सिर्फ वेट करने से नहीं आएगा, बनाना पड़ेगा। यहां से जब वापस जाएंगे सोमवार को, जहां जहां रहते हैं आपके 3-4 किलोमीटर के अंदर राजयोग मेडिटेशन सेंटर है। किस किस को ऑलरेडी पता है मेरे नजदीक का सेंटर कौन सा है? तो ये प्रोग्राम खत्म नहीं होगा मंडे को, हमारे को इसको सिर्फ 3-4 दिन अच्छा लगा ये प्रोग्राम नहीं बनाना है, हमें ये बनाना है कि आज के बाद जीवन बदल गए। तो जाने के बाद अपने नजदीक के सेंटर पर जाएंगे, एक बार राजयोग फिर से सीखेंगे। दीदियां एक एक को अलग अलग बिठा कर कराती हैं, यहां तो हम बहुत बड़े संगठन में कर रहे हैं ना, एक एक को कराएंगे वहां पर, और फिर हम 3 महीने के लिए सेंटर जाते रहें, उसका प्रयोग करते रहें, परमात्मा के महावाक्य सुबह सुबह अपने अंदर भरते रहें। 3 महीने में आपकी वाइब्रेशन यहां से यहां चली जाएगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी शक्ति आपके घर के वायुमंडल को बदलेगी, आपके बच्चों की स्थिति ऊपर चली जाएगी। हमें अपने परिवार का शक्ति स्तंभ बनना है। अगर हमने अभी नहीं किया तो कुछ चीजें हमारे हाथों से निकलती जा रही हैं, वो ऐसी चीजें हैं जिनको वापस ठीक करना बहुत मुश्किल है, शायद कई केसेस में असंभव है। इसलिए अपने घर का शक्ति स्तंभ बने, अपने बच्चों के लिए शक्ति का स्रोत बने, खुद की ऊर्जा को ऊपर उठाएं। आज के सुबह के जो परमात्मा के महावाक्य हमारे यहाँ चले, उसमें परमात्मा ने कहा आपकी वृत्ति आपकी वाइब्रेशन बनाएगी, और आपकी वाइब्रेशन आपके घर का वायुमंडल बनाएगी, सिर्फ आपकी वृत्ति आपकी सोच। तो जितना हम ज्ञान और योग से अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाएंगे, आपके बच्चों की शक्ति बढ़ती जाएगी। चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। आज एक छोटा सा प्रयोग करते हैं, नाश्ता साइलेंस में करते हैं, मौन में। कौन कौन नाश्ता पूरे होने तक मौन में रह सकता है आज आधे घंटे के लिए? पक्का करके देखो, हर रोज सुबह थोड़ी देर मौन रखना चाहिए। विल पावर बढ़ाता है, शब्दों की भी शक्ति बढ़ जाती है, नहीं तो हम ऐसे ही बोलते बोलते रहते हैं, हमारे शब्द ऐसे बिखरते रहते हैं। हर रोज कम से कम आधा घंटा सुबह मौन रखना चाहिए, और उस मौन के टाइम फिर टीवी फोन नहीं ऑन करना कि मेरा मौन है, बोलेंगे नहीं लेकिन टीवी फोन देखेंगे, मौन यहाँ का मौन है वो। तो हम एक मिनट साइलेंस में बैठकर हम बिल्कुल इस हॉल से साइलेंस में उठेंगे। फरिश्ते कैसे चलते हैं ना, वैसे उठेंगे, ऐसा लगेगा कैंपस में कोई है ही नहीं, बिल्कुल फरिश्तों। और चलते हुए अपने कार्मिक अकाउंट्स को चेक करना, कौन सा चेंज करना है, कौन सी सोच बदलनी है, किसको दुआएं देनी है, कहीं अगर काम ठीक नहीं चल रहा है उसको दुआ देनी है, काम को भी दुआ देनी है, शरीर को दुआ देनी है। कल वो 10 संकल्प लिखे थे, उसको रोज रात को करना है सोने से पहले, और रोज सुबह करना है उठते ही। ठीक है, कर लेंगे सभी। चलिए एक मिनट साइलेंस में बैठे, वापस ब्रिकुटी के बीच, मैं आत्मा बिंदी चमकता हुआ सितारा, मेरा हर कर्म मेरा भाग्य लिखता है, मेरे भाग्य की कलम मेरा हर कर्म है, मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है, सबको सुख देने वाला है, किसी को क्षमा करना, सबको दुआएं देना, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा संस्कार है। मेरे घर धन दुआओं के साथ आता है, अन्न परमात्मा की याद में प्रसाद बनता है, मेरा हर भोजन प्रसाद है, मेरा मन दिन की शुरुआत परमात्मा से योग लगाकर अपने अंदर शक्ति भर परमात्मा के महावाक्यों को अपने अंदर धारण कर श्रेष्ठ सोच बोल और व्यवहार की शक्ति सुबह सुबह मुझ आत्मा में भर जाती है, और सारा दिन कर्म योगी जीवन योगी स्थिति में कर्म करेंगे। सबको देने वाली आत्मा मैं सत्योगी आत्मा हूं, स्वर्णिम भारत लाने वाली आत्मा, सृष्टि पर सत्योग लाने वाली आत्मा मैं सत्योगी आत्मा हूं। अब बिल्कुल इसी स्थिति में, इसी साइलेंस में अपनी चेकिंग करते हुए, अपना चार्ट लिखते हुए हम बिल्कुल साइलेंस में नाश्ते के लिए चलेंगे। आज डाइनिंग हॉल में भी ऐसा लगे जैसे कोई आया नहीं है, इतने साइलेंस में करेंगे। दीदी जो इंस्ट्रक्शन देंगी वो सुनते हुए जाएंगे।